ओम शांति। आप सभी आए हो तो विशेष करके सुबह सुबह में राजयोग मेडिटेशन के सेशन चलते हैं। तो पहले दिन आप सभी ने पहला सेशन किया होगा कि हम कौन हैं, परिचय सभी को मिला। हम कौन हैं? हम एक आत्मा हैं, एक शक्ति है। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी परम धाम से पाठ प्ले करने आए हैं। हमारा आदि अनादि स्वरूप श्रेष्ठ है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम और शक्ति सात गुण बताए जाते हैं। दूसरे दिन आप सभी ने सुना होगा परमात्मा का परिचय, कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कब आता है, उनकी पूजा किस रूप में हम आज तक करते आए हैं। ये सारा विस्तार से परिचय आप सभी को मिला। मिला? मिला। तीसरे दिन वो परमात्मा को हम याद कैसे करें, उसका आधार और विधि बताई गई। कल किया सभी ने, ये सेशन सभी ने किया। आज का सेशन है राजयोग मेडिटेशन से इनर पावर बढ़ती है, आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और श्रेष्ठ मूल्यों हमारे जीवन में धारण करते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं और असंभव भी, मेडिटेशन के द्वारा असंभव भी संभव करने की ताकत आ जाती है। तो आज दुनिया में सभी क्या चाहते हैं? आप सभी क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मन की शांति चाहते हो और सुख चाहते हैं कि हम जब तक जिए पूरा जीवन पर्यंत हम सुखी रहे। और क्या चाहते हैं? हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हमारे जीवन में सारी प्राप्तियां होती रहे, यही चाहते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए एक प्रोडक्ट है, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ सब प्राप्त करने के लिए एक प्रोडक्ट है इनर पावर, आंतरिक शक्ति। देखो आज दुनिया में सब सुख है, सुविधाएं हैं, साधन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ताकत नहीं है। परिस्थिति आती है तो ना सहन करने की ताकत है, ना समय पर हम यथा योग्य निर्णय ले सकते हैं, ना कोई बात अंदर में समा सकते हैं। कहते हैं मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं समा नहीं सकता, मैं आने वाली परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है। यही सब बोलते हैं, क्योंकि इस सृष्टि रंगमंच पर जब हम आए थे तो हम सर्वशक्तियों से भरपूर थे, श्रेष्ठ गुणों से भरपूर थे, हमारी आत्मा में इनर पावर भर के परम धाम से इस सृष्टि पर आए थे। लेकिन क्या हुआ, हम यहां आए, जन्म मरण के चक्र में आते 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 देह अभिमान में आ गए और देह अभिमान के कारण हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे, हमारे विचारों में नकारात्मकता आ गई है, देह भान में जी रहे हैं और हमारे अंदर जो श्रेष्ठ गुण थे वह भी हम खो बैठे हैं और अवगुण आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि आदि। तो हमारी आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई और आज हम खोखलेपन का अनुभव कर रहे हैं, कहते हैं हमारे में कोई शक्ति नहीं है, कोई अच्छी सोच करने की भी शक्ति नहीं है, अच्छा बोलने की भी शक्ति नहीं है, अच्छा व्यवहार करने की भी शक्ति नहीं है, इतने तक आ गए हैं। तो जैसे नवरात्रि के दिनों पर नव देवियों की पूजा होती है, उसमें विशेष मां जगदम्बा की पूजा होती है और मां जगदम्बा की पूजा करते हैं और मां जगदम्बा का स्वरूप आपने देखा होगा, अष्ट पूजा है। कितनी पूजा है? अष्ट पूजा। और हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, अष्ट पूजा वो भी एक शक्ति की निशानी है और अस्त्र शस्त्र वो भी शक्ति की निशानी है। कहते हैं देवियों ने जब जब असुरों ने इस धरती पर अंतक मचाया तब देवियों ने अष्ट पूजाधारी रूप बनके अस्त्र शस्त्र लेकर के असुरों को मारा। तो मैं आज आपसे प्रश्न पूछूंगी कि वास्तव में इस दुनिया में आज घोर कलयुग है, अति अधर्म है, अति पाप चल रहा है, लेकिन ऐसी दुनिया में भी ऐसे असुर कोई पैदा हुआ है जो असुरों का भयंकर रूप दिखाते हैं? इस कलयुग में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। तो जगदम्बा मां सरस्वती आदि देवियों की पूजा होती है, वो किसकी संतान है? कहते हैं देवी देवताएं सब शिव की रचना है। देवी किससे प्रकट हुई है? शिव से प्रकट हुई है और शिव से ही उन्होंने शक्ति प्राप्त की है और असुरों को मारा ये गायन है। लेकिन कौन से असुरों को मारा? तो देवियां शिव की संतान है, इसे हम सभी आत्माएं भी परमात्मा शिव की संतान है। देवियों ने भी तपस्या कर करके उन्होंने अपने जीवन में शक्तियों को धारण किया है, इसे हम आत्माएं भी हमारे भारत में गीता में जो राजयोग सिखाया है तो गीता में वर्णन है कि राजयोग से आप राजा होकर राजा बन सकते हो, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हो, विकृति को नष्ट कर सकते हो, अपने आप को शुद्ध पावन बना सकते हो। हम आत्माएं भी परमात्मा जो है जैसा है उसी रूप से जानकर मानकर सही विधि से अगर हम जीवन में परमात्मा शिव को याद करते हैं तो जो देवियों को शक्ति प्राप्त हुई है वह हम उनके शिव के बच्चे हैं, हम भी जीवन में राज्यों के द्वारा अष्ट शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले शक्ति का हम चिंतन करेंगे कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसमें कछुआ ऊपर दिखाया हुआ है। कछुआ क्या करता है? जब खाना होता है तो इंद्रिय बाहर निकालते और चलते चलते जहां घास होता है वो खाता है, जाता है और खा करके फिर अपने जगह पर आकर स्थित हो जाता है कछुआ। और काम पूरा हुआ तुरंत अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करता है, अंदर में समेट लेता है। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए की ऊपर की जो ढाल होती है वो बड़ी स्ट्रिक होती है, कड़क होती है, कोई तोड़ नहीं सकता। छोटे बच्चे भी कछुए के ऊपर पांव रख के चलते हैं, बच्चों को भी पता नहीं पड़ता है कि ये कछुआ है। हमने ये अनुभव किया है, हम बहुत छोटे थे, एक मंदिर में कछुआ रहता था, हमें पता नहीं था तो उसके ऊपर पांव रखते, गोल गोल पत्थर पड़ा है लेकिन वो हिलता डुलता नहीं क्योंकि उसकी ढाल जो है सुरक्षित उसको करती है। और उनका जो शरीर है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, लेकिन ढाल मजबूत होने के कारण कछुए को कोई डरते। अगर इंद्रियों को बाहर निकाला, कोई ने उसको देख लिया तो डर जाएगा और अंदर में इंद्रियों को समेट लेगा। ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन में हम सब इस कर्म क्षेत्र पर हैं, पाठधारी हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म पूरा होते अगर हम कछुए की तरह आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते और परमात्मा को याद करते तो परमात्मा हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच रख देता है तो हमें कोई भय नहीं लगता। परमात्मा को अच्छे से याद करते हैं तो परमात्मा हमारा सभी प्रकार से ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति आएंगी लेकिन हमें बचाता रहेगा। तो कछुए की तरह हम अपने जीवन में यह प्रयास करें, कर्म करना है और कर्म करते बीच बीच में परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमारी सदा सुरक्षा करता रहेगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, जैसे बिस्तर है समेटा हुआ है। देखो आप सभी यहां आए हैं तो साथ में लगेज तो लेके आए ना। अगर लगेज आपने ज्यादा ले लिया तो यहां आते आते आपको बड़ी मुश्किलात का अनुभव होगा, लगेज उठाने में तकलीफ होती है, लेकिन जरूरी है उतना लगेज लिया तो हम ये यात्रा का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं जीवन एक यात्रा है। जीवन क्या है? एक यात्रा है। जैसे हम नाव में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, इंजॉय करते जा रहे हैं, गीत गाते, तालियां बजाते, पानी में हाथ लगा के जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। नाव में बैठे हैं, एंजॉय करना है, बस आराम से जा रहे हैं। लेकिन नाव में चलते चलते कोई काना पड़ गया नीचे से, तो क्या होगा? काना पड़ गया तो अंदर में पानी आने लगेगा और जो यात्री बैठे हैं नाव में उसको भय पैदा होगा, अरे अब तो गए कि गए, अभी हमें कोई बचा नहीं सकता, नाव में पानी आ गया तो बचना मुश्किल है। जब तक नाव में पानी नहीं था तब तक हम सुरक्षित समझते हैं। इसे हमारी जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा में चलते चलते हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार के दुख भी आते हैं, परिस्थिति आती है, क्योंकि सदा एक रस सुख रहे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। स्थिति परिस्थिति वातावरण सदा बदलता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो ऊंच नीच तो होता ही रहता है। लेकिन जैसे नाव के अंदर पानी नहीं आया तब तक सुरक्षित समझते हैं, ऐसे हमारे जीवन रूपी नैया में, हमारे दिल में बाह्य जगत की दुख दर्द की, व्यर्थ बातों की, नेगेटिव बातों की दुविधाएं हमारे मन में अगर नहीं आई तब तक तो हम जीवन को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बातें अंदर में नेगेटिव है, व्यर्थ है, बीती हुई बातें निकलती नहीं है, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा? बहुत मन में बातें भरी हुई है, सोचते रहते तो ज्यादा सोचने से टेंशन आता है और टेंशन करते करते हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन का लास्ट स्टेप है पागलपना हो जाता है, व्यक्ति पागल बन जाता है। तो जीवन यात्रा में हमें यह बात याद रखनी है कि मैं यात्री हूं, मैं निमित्त मात्र हूं और जीवन यात्रा एक संघर्ष भी है, करना है, लेकिन अपने को निमित्त आत्मा समझ के करेंगे और परमात्मा का साथ लेते रहेंगे, सुबह शाम परमात्मा को याद करते रहेंगे तो आपके अंदर यह समेटने की शक्ति ऑटोमेटिकली भर जाएंगी। भगवान ने हमें तीन पत्ते दिए हैं, कितने पत्ते? तीन पत्ते, बात सुनी है? किसी ने सुनी है? नहीं। तीन पत्ते देकर भेजा है, दो पत्ता भगवान ने लिख कर भेजा है। पहले पन्ने में भगवान ने लिखा है हमारी बर्थडे, जो हमें आज सबको मालूम है, बर्थडे मालूम है, और तीसरे पन्ने में भगवान ने लिखा है मृत्यु की डेट, वो हमें मालूम नहीं है, और दूसरा जो पेज है भगवान ने खाली छोड़ दिया। क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। वो पेज किसको भरना है? हमें भरना है। जीवन का पेज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन कहते हैं वो पन्ना है, वो खाली है, आए खाली पन्ना है, और उसमें हमें क्या भरना है। चाहे पाप कर्म भी भर सकते हो, पुण्य कर्म भी भर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म भी भर सकते हो, परमात्मा की याद की शक्ति भी आप भर सकते हो, दुआएं भी भर सकते हो, आशीर्वाद भी भर सकते हो। जो भरना चाहो वो किसके हाथ में है, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो दूसरा पन्ना हम कैसा भरेंगे? श्रेष्ठ भरेंगे, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर जाएंगे हम, पुण्य कर्म की पूंजी लेके जाएंगे, दुआओं की पूंजी लेके जाएंगे, ईश्वर की याद की शक्ति लेके जाएंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ ऊंचा करो जरा। सभी कर सकते हैं, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। सभी ने हाथ ऊंचा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हमारा परब डॉक्टर है, बॉम्बे में रहता है डॉक्टर परब, और उसकी नौकरी सबसे पहले आईसीयू में लगी थी, और आईसीयू में ऑक्सीजन पर पेशेंट को रखते हैं, और ऐसे पेशेंट होते हैं जो मरने वाले हैं, बचने वाले नहीं होते हैं, जाने वाले होते हैं। वो डॉक्टर कहता है, मुझे पता है कि ये जाने वाला है, बचने वाला नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट आया जिसको जबरदस्त हार्ट का हमला आया था, ऑक्सीजन पर था, मैं उनको देखता था, तो उनको देख करके थोड़ा दूर गया ना, तो वह व्यक्ति रोने लगा, रोने लगा, भान में था, रोने लगा। तो रोने का आवाज सुन करके डॉक्टर परब उसके पास गया और पूछा, माथे पर हाथ रख के पूछा, क्या हो रहा है, क्यों रोते हो? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि देखो, मुझे पता है मैं जाने वाला हूं, बचने वाला नहीं हूं, लेकिन आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जीवन में बड़ी भूल की है, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, और नहीं करना चाहिए वो मैंने किया। मैं बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, सुख सुविधा है, पैसा है, बहुत है, लेकिन मेरा अंदर ईगो रहता था और मैं लोगों को तुच्छ समझता था और अभिमान में चलता था और सबका अपमान करता था, सबको मैं जलील करता था। कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया है करके, अपने परिवार को भी मैंने नहीं छोड़ा है, सबको दुखी किया है। अभी मैं आईसीयू में हूँ, ऑक्सीजन पर हूँ, लास्ट स्टेज है मेरी, जाने का समय आ गया, लेकिन उन आत्माओं से मैं माफी मांगने भी नहीं जा सकता हूँ। तो डॉक्टर परब ने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, मन से आप माफी मांग लो, परमात्मा को याद करो। फिर भी उनका मन भगवान में नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कभी भगवान में विश्वास रखा ही नहीं, मैंने जीवन में कभी ईश्वर को याद किया ही नहीं, मैं बड़ा नास्तिक हूं। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है ईश्वर कोई शक्ति है, मैं जाऊंगा तो उनके पास ही जाऊंगा और धर्मराज मेरा हिसाब लेने वाला है। ऐसे रोते रोते उसी समय ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या लेकर गया? अशांति में शरीर छोड़ा, अंत मति शो गति गाई हुई है। तो ये जीवन एक प्रभु के द्वारा मिला हुआ एक उपहार है, भेंट है। तो इस जीवन का हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से लाभ उठा लेना चाहिए। हम अच्छे कर्म करके जावे। एक कवि ने गाया है, जब तू आया इस धरा पे जगत हसे तू रोई, पर ऐसी करनी करके जा कि तू हसे जग रोए। जब जीव यहां आए ना, तो हम रोते रोते आए थे और हमारे माता पिता जहां हमने जन्म लिया है वो खुश होते थे, मुख मिटा करते थे, बच्चा आया बच्चा आया। लेकिन जाए तो ऐसे अच्छे कर्म करके जावे जो लोग हमें पीछे से याद करें और हम खुशी से भगवान के पास जावे। ऐसा जीवन जी के जाए जो भगवान भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हो जावे। हो सकता है? हो सकता है? दोनों हाथ उठा करो। सभी से हो सकता है। ऐसा सुंदर श्रेष्ठ कर्म करके जावे जो पीछे से हमारी यादगार बन जाए, हमारे जीवन से लोग प्रेरणा ले, ऐसा सुंदर जीवन हम बनाए। तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज सभी कहते हैं ना, मेरे में सहन शक्ति नहीं है। ये चित्र में दिखाया सहन शक्ति। आम का पेड़ है, नीचे बच्चा है, बच्चे को इच्छा हुई मुझे आम खाना है, आम को पका हुआ देखते हैं तो बच्चे को तो नॉर्मल इच्छा होती है मुझे मिले फल। तो वो छोटा है तो आम पाने के लिए वो क्या करता है, नीचे से पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के पेड़ को मारता है और आम नीचे गिरता है और बच्चे को फल मिल जाता है। लेकिन पेड़ जो है पत्थर खाकर, पत्थर को सहन करके बच्चे को क्या देता है, मीठा फल देता है। ये सहन शक्ति। आज दुनिया में हम कहेंगे तीन प्रकार की सहन शक्ति है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की शक्ति है सहन शक्ति। पहला प्रकार की सहन शक्ति ऐसी है, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए 8-10 साल का, और उसको मोबाइल की आदत पड़ गई है। आजकल तो माँ बाप बच्चों को एक खिलौना पकड़ा देते हैं, तंग करता है ना, तूफान मस्ती करता है, ले मोबाइल ले देख ले, वो बिजी हो जाता है। फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता तो फिर माँ बाप मोबाइल छुड़वाते हैं, माँ बाप डांटते हैं, मोबाइल छोड़ चल मेरे को दे दे, तो जबरदस्ती माँ बाप उनके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अरे मेरे से मोबाइल ले लिया, मुझे देखना था, मुझे गेम खेलनी थी। माँ बाप को पता है कि मोबाइल से कितना नुकसान होता है, क्ष किरण पड़ती है, आंखों को नुकसान होता है, मेमोरी पर अटैक होता है, कमजोर पड़ जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है। हमारे गुजरात में मैं कहूंगी कि 500 केस बच्चों के आंखों के कैंसर के एडमिट हुए हॉस्पिटल में, 500 केस, 500 इतने केस आंखों में कैंसर बच्चों को निकला, आंखों में कैंसर आ गया मोबाइल के कारण। तो हम क्या करेंगे, उसकी गंभीरता को समझे और बच्चों को हाथ में मोबाइल ना दे, वो तो हम कर सकते हैं। तो माँ बाप मोबाइल से छुड़वाते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चे को गुस्सा आता है, मम्मी उसको खाना देती है, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता है, बर्तन को फेंकेगा, पिताजी को पता चलेगा, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला, मैंने मोबाइल ले लिया लेकिन सहन नहीं हुआ है, सामने नहीं बोला लेकिन गुस्सा बाहर थोड़ा एक्टिविटी से, क्रिएटिविटी से निकलता है, तो वो भी एक सहन शक्ति है, सामना नहीं किया लेकिन गुस्सा अंदर में पड़ा पड़ा है, वो भी एक सहन शक्ति है। दूसरे प्रकार की शक्ति, सहन शक्ति प्रेशर कुकर जैसी है। प्रेशर कुकर में दाल चावल चढ़ाओ, जब पकने पर होता है सीटियां बजने शुरू होती है, पक जाते हैं, हम कुकर को बंद करते हैं। इसे हमारे आगे कोई ऐसा वैसा बोलता है, हमारा कई बार अपमान करता है, तो हम 10 बार तो सहन कर लेंगे, जब 11वीं बारी आए हमारे सामने तो प्रेशर कुकर की तरह हमारी सीटी बज जाती है, मुख से निकलता है, बहुत हो गया, अब बंद करो, आपने मुझे कितनी बार जलील किया, अपमानित किया, अब मैं सहन नहीं कर सकता। हाँ, 10 बारी सहन किया लेकिन प्रेशर कुकर की तरह 11वीं बारी तो सीटी बज गई, वो भी सहन शक्ति है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन से ऐसी सहन शक्ति आ जाती है हमारे अंदर कि दाया हाथ सहन करता है और बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता, इनर पावर बढ़ती है। राजयोगी समझता है, तपस्वी आत्मा समझती है, सहनशील आत्मा समझती है कि वो अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं, वो मुझे दुख दे रहा है, मेरे को अपमान कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल मैं क्या हूं, उनको सच पता चलेगा ही चलेगा। तो मुझे सहन करना है, सहन करता जाएगा, और जो सहन करता है इस दुनिया में वो महान बन जाता है। जो संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो तपस्या के मार्ग पर जब चल पड़ते हैं ना, तो शुरुआत में तो उनके चरणों में कांटे ही आते हैं, पत्थर ही आते हैं, लोग उनकी निंदा करेंगे, घर वाले भी बोलते रहेंगे, परिवार वाले, समाज वाले बोलते रहेंगे, अरे ये तो साधु बन गया, ये तो संत बनने गया, क्या मिलेगा, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन शान उनका लक्ष्य है कि मुझे तपस्या करके जीवन में सिद्धि शक्ति को प्राप्त करना है, तो वो बात में वो अचल रहता है, और अचल होने के कारण और परमात्मा में विश्वास रखने के कारण वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और संत महान विभूति बन जाता है, जो सारी दुनिया फिर पीछे से उसको याद करती है। तो हमें घर बार छोड़ने की तो बात नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को हम याद करेंगे, करते रहेंगे, और यह अभ्यास करेंगे कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, अंदर से शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं और शांति धाम की रहने वाली हूं। मुझे हमेशा शांत रहना है। कोई मान दे या अपमान करे, मुझे सब सहन करना है। सिंधी में कहावत है, सच तो बैठो नच। सच्चा आदमी खुशी में रह सकता है और उसमें शान शक्ति भी रहती है। जो झूठ होता है व्यक्ति, उनका पांव नाचता नहीं है, भारी रहता है, हल्का नहीं रहता है, खुशी में नाचता नहीं है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि हमारे को कोई बात पूछे और सत्य है तो हम फट से बोल लेंगे, फट से बोलेंगे ना, यही बात है। लेकिन जब वो हमारे को झूठ बताने की कोशिश करेगा तो पहले हिचकेगा, थोड़ा धीरे से सोचेगा, फिर झूठ बोलेगा और उनसे हम उसको पकड़ सकते हैं कि यह झूठ बोल रहा है। सोच के जवाब दिया, धीरे से आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा है तो ये झूठ है। और सच जो है फट से बोलेगा, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने से अपने शांत स्वरूप की स्थिति से, शांति के सागर पिता की याद से, एक कर्म क्षेत्र पर निमित्त है ऐसा समझने से और कर्म की गुह्य गति समझने से कि जो आत्मा जैसा कर्म करेगी वैसा फल उसके सामने आएगा, मुझे गुस्सा करके अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना है। तो आराम से शांत शक्ति धारण कर लेगा। शांतशील व्यक्ति सहन करता जाता है तो उसके जीवन में एक सहन शक्ति बन जाती है। सहनशील पहले बनना, फिर शांत शक्ति उसमें पक्की हो जाती है। किसी भी परिस्थिति आएंगे लेकिन शान करेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे और सदा खुशी में नाचते रहेंगे। और चौथी है क्षमाने की शक्ति। चौथी शक्ति है क्षमाने की शक्ति। समुद्र है, कितना समाता है। जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम चारों तरफ से नदियों का पानी बह बह के समुद्र के अंदर जाता है। ऑलरेडी समुद्र भरा पड़ा है लेकिन उनका पेट कैसा है, विशाल है। समुद्र का पेट विशाल है, सारा पानी जितना भी पानी बह ऊपर से आया बड़ा पेट रख करके समा लेता है। इसे राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा हमारे अंदर समाने की शक्ति भी आ जाती है। खास करके बहनों में समाने की शक्ति नहीं होती है, वरदान है कि बहनों के पेट में बात नहीं रहेगी। भाई तो फिर भी नहीं बोलेंगे लेकिन बहनें, घर में कुछ होता है ना तो उनके खास जो होते हैं, संबंधी होते हैं, हम मित्र होते हैं, सखिया होती है तो उनको बता देंगे हमारे साथ ऐसा हुआ। समा नहीं सकते हैं। तो समाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है तो हम समाने की शक्ति, देखो समुद्र की विशेषता है, कोई कचरा कितना भी समुद्र में फेंकता है लेकिन समुद्र क्या करता है, अपने पेट में नहीं समाएगा, लहर के द्वारा फिर से किनारे कर देगा। कोई ने डेड बॉडी फेंकी ना समुद्र में बीच में, तो भी धीरे धीरे करते लहर के साथ डेड बॉडी किनारे पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन में कई बातें आती है, कोई हमारे कान भरते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, यह ऐसा है वैसा है, तो हमें अंदर में रखना नहीं है। जैसे हम आपके सामने एक अंगुली रखते हैं, आप ऐसे हो तो तीन अंगुली मेरे तरफ गई ना, मेरे तरफ गई, तो मैं दूसरों का अवगुण एक देखती हूं और मेरे अंदर तीन अवगुण है, तो मैं सबको क्या करूं, हर एक के अंदर गुण है और अवगुण भी है। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे चोरी करो ना तो गुणों की चोरी करो, अवगुणों की चोरी ना करो। गुण को देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे और अवगुण देखेंगे तो अवगुणों का दूसरों का चिंतन करेंगे तो वो अवगुण हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हम डस्टबिन है, हमारा दिमाग डस्टबिन है जो कोई भी कचरा डालता जाए, कोई के अवगुण हम डालते जावे तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा बताओ? कचरे का डब्बा बन जाएगा और हमारे जीवन में शांति सुकून अनुभव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को शांत स्वरूप में स्थित करेंगे और यह दृढ़ता से संकल्प लेंगे कि मुझे किसी का अवगुण देखना नहीं है, सब के गुणों को देखना है। जैसा चिंतन होता है वैसा हमारा चरित्र बनता है। तो हम व्यर्थ से नेगेटिव बातों से क्या करेंगे, दूर रहेंगे, सागर की तरह कचरा बाहर फेंक देंगे। हो सकता है, हो सकता है, थोड़ा हाथ ऊंचा करो, शाबाश, धन्यवाद। हम किसी का कचरा लेने वाले डस्टबिन नहीं है, कचरा फेंकने वाले ने फेंका और हमने ले लिया कचरा, तो हम डस्टबिन बन जाएंगे। तो दूसरों का कचरा कभी लेना नहीं है, ये सागर की विशेषता है। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। हीरा जवाहरात का व्यापारी सोने को परखने के लिए क्या करता है, क्या करता है, पत्थर पर घिसता है, सच्चा है या सोना या झूठा है। ऐसा सीधा ही हमारा सोना लेता नहीं है, हम बेचने जाते हैं तो परख के लेता है, उसी अनुसार कीमत निकालता है। इसे मन की एकाग्रता से, एक में मन लगाने से हमारे अंदर परख शक्ति आती है। और तपस्या में बल होता है, हमारा अनुभव है, मेडिटेशन में बल होता है, जो सुबह सुबह उठकर सच्चे मन से दिल से मेडिटेशन करता है उनमें शक्ति आती है, वह सामने आया हुआ व्यक्ति को भी परख सकता है। कि इनके विचार कैसे हैं, उनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। आज दुनिया में कई लोग धोखा खाते हैं, परखने की शक्ति न होने के कारण भरोसा कर लेते हैं और फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम व्यक्ति को परख सकते हैं, समय संजोग परिस्थिति को भी परख सकते हैं, एक इनर पावर बढ़ती है एकाग्रता की शक्ति से। एक में एकाग्र होने से ये इनर पावर परखने की शक्ति आती है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, तब महातपस्वी होते हैं, तो उनमें भी परखने की शक्ति होती है। ये क्या भाव लेकर आए बोल देता है, हमारी मन की बातें भी बोल देता है। क्यों? उनके अंदर तपस्या का बल है, मेडिटेशन का बल है। तो राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर परखने की शक्ति जरूर आती है। और छठी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय शक्ति में तो मेडिटेशन करने से निर्णय शक्ति आती है। तराजू दिखाया है, तराजू दिखाया, और कोर्ट में हम तराजू देखते हैं, देखा है ना, कोर्ट में तराजू होता है और न्याय की देवी मूर्ति होती है, न्याय की देवी मूर्ति होती है, उसके एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में क्या होती है, तलवार होती है, और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जो आंखों पर पट्टी बांध करके किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो क्या होता है, धोखा खा लेते हैं। सही निर्णय समय पर नहीं ले सकते तो भी गुनेगार को सजा नहीं मिलती और निर्दोष जेल में जाता। तो तराजू क्या है, इंसाफ का प्रतीक है, तलवार है ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान तलवार, ज्ञान मनस समझ होनी चाहिए, सही निर्णय समय पर ले सके। तो अगर हमारा मन शांत है और रोज सुबह शाम मेडिटेशन करते, कर्म करते भी कर्म योगी बन के रहते हैं, तो यथा योग्य समय पर हम निर्णय ले सकते हैं। देखो धृतराष्ट्र था, महाभारत में दिखाते हैं धृतराष्ट्र था, और उसकी पत्नी कौन थी, गांधारी, हम सब जानते हैं। तो राजा उसका पति था अंधा था, तो गांधारी ने क्या किया कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, वो भी अंधी होके चली पूरी लाइफ। और कौरव पांडव की बात चली तो किसको राज देवे, तो धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे और धृतराष्ट्र का मोह अपने पुत्रों में था, दुर्योधन में विशेष करके था। तो पुत्र मोह में मीटिंग भी हुई, कृष्ण ने भी सभा में समझाया पांडवों को कुछ दो, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं देने वाले हैं। तो फिर क्या हो गया, महाभारत हो गया, वो हो गया अंधा कानून। अंधा कानून जब होता है ना, हाँ, तब महाभारत होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। आप सभी का भी अनुभव होगा जीवन में कि आपस में भाई भाई में भी झगड़ा होता है, संपत्ति के लिए झगड़ा होता है, आपस में निर्णय नहीं कर सकते तो वकील रखते हैं, कोर्ट में जाते हैं और वकील की बुद्धि पैसा लेकर हम खरीद करते हैं और जज जब निर्णय देता है हाँ, वही अनुसार हमें करना पड़ता है। तो आज हम सही निर्णय नहीं ले सकते, ताकत नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कि राजयोग मेडिटेशन में इतनी ताकत है जो हमारे अंदर सही निर्णय समय पर लेने की शक्ति आ जाती है, अद्भुत शक्ति आ जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, छोटेपन में हम पढ़ाई में पढ़ते थे तो उस समय हमको एक टीचर ने कहानी सुनाई थी, उसका सार यही था, जो दिखता है वो कई बार सही नहीं होता है। तो उन्होंने एक सुनाई कहानी कि एक गरीब परिवार था, उसका पति जो था, भाई जो था, लकड़ा जंगल में काटने जाता था और बेच करके उनका गुजरान चलाते थे। तो एक बार वो भाई जंगल में गया लकड़ा काटने के लिए और उसकी पत्नी जो थी उनको एक छोटा सा बच्चा था, तो उन्होंने खटिया पर सुलाया था बच्चे को और उन्होंने घर में नेवला पाल के रखा था। और नेवला इतना पालतू था, अच्छा था, जो हर बार रक्षा करता था उनकी, सांप को आने नहीं देता था क्योंकि जंगल एरिया है ना तो सांप बहुत आते हैं, तो नेवला रखा था सुरक्षित रहे। तो नेवला तो वफादार था, लेकिन वो जो बहन थी मटका लेके पानी भरने गई कुएं से ऊपर, तो पानी भर के मटका लेके वापिस आई ना तो नेवला सामने आया घर में, सामने आया और उनका मुंह देखा ना, खून भरा था, खून भरा। तो खून भरा मुंह देख करके बहन घबरा गई, सोचने लगी इन्होंने जरूर मेरे बच्चे को मारा है, रोज सांप को मारता है ना, आज मेरे बच्चे का खून पी गया घर में। तो जल्दीबाजी में घबराने के कारण उन्होंने पूरा पानी का भरा हुआ मटका नेवले पर डाला और नेवला वहां ही मर गया। फिर घर में आई रोते रोते, अंदर आई, बच्चा तो आराम से सो रहा था लेकिन बहन में क्या नहीं थी, हाँ, सही पर परखे नहीं, नेवले को परखे नहीं और नेवले का मौत हो गया। फिर तो नेवले के ऊपर रोने लगी, अरे मैंने क्या कर दिया, नेवले को मार दिया। वो रोज सांप को मारता था, वफादार था, लेकिन मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं रखा और सोचा भी नहीं आगे पीछे का और उसको तुरंत मार दिया। तो कई बार उतावलेपन से हम निर्णय ले लेते हैं तो भी क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। तो निर्णय लेने में भी हमें सोच समझ के धीरज से शांति से निर्णय लेते हैं, देख करके अच्छे से परख करके लेते हैं तो हम जीवन में सक्सेस रहते हैं, सफलता मूर्त बन जाते हैं। कोई बात में हम फंसेंगे नहीं, न किसी की हिंसा कर सकेंगे। अभी सातवीं शक्ति है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति। परिस्थिति जीवन में आती है, चलो आर्थिक समस्या है, हम अच्छे से सामना कर लेते हैं। शारीरिक बीमारी है तो भी सामना कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्लड के निरीक्षण का, समझो हमारा बेटा ही अचानक शरीर छोड़ दिया, तो हमारी हालत क्या हो जाती है बताओ? परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, ताकत नहीं है। इतना आक्रंद करते, इतना रोते हैं, बात मत पूछो। कई व्यक्ति तो पागल हो जाते, परिस्थिति आई है, भले हम समझते हैं परिस्थिति भयानक है, फिर भी अगर उसी समय हम ज्ञान को यूज करते हैं तो परिस्थिति को पार करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति सहज आ सकती है। देखो हमारे संबंधी का मृत्यु हुआ, उस टाइम हम यह सोचते हैं कि सब आत्मा है, हर एक आत्मा का रोल है, ऋणानुबंधनुसार हम सब परिवार में इकट्ठे हुए हैं, और जब ऋणानुबंध पूरा हो जाता है तो हमें सबको एक दिन तो जाना है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, हर एक को एक जगह जहां हमें जाना है वहां ही सब जाएंगे, वहां उतरेंगे, वो इम्पॉसिबल है। ट्रेन में बैठे हैं, जिसका स्टेशन पहला आता है वो उतर जाता, दूसरा आता वो उतर जाता, लास्ट तक सब पैसेंजर हमारे साथ रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो संसार चक्र का नियम है जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, हार और जीत का यह खेल है। उसी समय ये समझते कि आत्मा का पाठ पूरा हुआ, उनके साथ हमारा लेन देन पूरा हुआ, इसलिए चला गया। और गई हुई आत्मा को भी क्या चाहिए बताओ? गई हुई आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। तो शांति कहां से मिलेगी? मेडिटेशन करने से मिलेंगे। खुद को भी शांति कहां से मिलेगी? मेडिटेशन करने से मिलेगी। तो उसी समय ज्ञान सही रूप से समझने से और परमात्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आ जाती है। ज्ञान होता तो आराम से परिस्थिति को पार कर सकते हैं, दुखी नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे। और आठवीं शक्ति है कौन सी? सहयोग शक्ति। गोवर्धन पर्वत का मिसाल सुनाते हैं। जब इंद्र को गुस्सा आया था कि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे की पूजा कर रहे हैं, उनको निश्चय नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन उसको गुस्सा आया तो कृष्ण ने पहाड़ उठाया अंगुली पर और साथ में ग्वाल ले सब थे, गोप गोपी का ये सब साथ में थे, और सभी ने अंगुली का क्या दिया? सहयोग दिया, साथ दिया, और सारे व्रजवासी बच गए। कहानी सुनिए ना, बच गए। तो सहयोग देना हमारे जीवन का धर्म और कर्म है। आज कोई दुखी है, समझो कोई यहां से गिर गया, उनकी हड्डी टूटी और हम देखते देखते उसका वीडियो उतार लेते तो गिरा हुआ है उसको अच्छा लगेगा? अरे ये कैसा व्यक्ति है, मेरा वीडियो उतार रहा है। गिरे हुए को धक्का देकर गिराना नहीं होता है, लेकिन गिरे हुए को हाथ दे करके ऊंचा उठाना होता है, साथ दे करके ऊंचा उठाना होता है। तो हम सब कौन है? परमात्मा की संतान है। परमात्मा दुख हरता सुख करता है, दुख हरता है सुख देता है, तो हम उनकी संतान है। तो संतानों का भी क्या फर्ज बनता है? सबको साथ देना, सहयोग देना, दुख हरना और सुख देना हमारा कर्तव्य बनता है। देखो देवताएं होते हैं, उनका हाथ कैसे होता है देने वाला? सब ऐसे करो देने वाला। अपने को समझना, मैं देने वाली देवता हूं, मैं देने वाला देवता हूं, मैं देने वाली देवी हूं। जो देंगे जीवन में वो वापिस लौट करके आएगा। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है। जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो कार्य करोगे वो सामने लौट के आएगा। अगर मैं सबको सुख देती हूं तो मेरे सामने क्या आएगा? सुख मिलेगा, सुख आएगा। मैं किसी को दुख देती हूं तो भविष्य में, या तो इस जीवन में नहीं तो दूसरे जीवन में, दूसरे जन्म में हमारे सामने दुख आएगा ही आएगा। कर्म जो भी हम जीवन में करते हैं ऊपर में संचित जमा होता है, और समय समय पर वह कर्म किया हुआ हमारे सामने आता है। कारण के बिना कुछ नहीं होता। हमने अच्छे कर्म किए, शुभ श्रेष्ठ कर्म किए तो हम इस जन्म में या दूसरे जन्म में सुख पाएंगे। आज कोई बहुत सुखी है तो अगले जन्म में पुण्य कर्म करके आए हैं इसलिए सुखी है। कोई दुखी है तो अगले जन्म में उन्होंने कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, पाप कर्म करके आए तो आज वो दुखी हो रहा है। तो कर्म की गति को सामने रखते हुए हमें सदा कर्म करना है। हम सबको प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो लोग भी मुझे क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? प्यार देंगे ना। आप सबके साथ मीठा बोलेंगे तो लोग भी मेरे साथ क्या करेंगे? मीठा व्यवहार करेंगे ना। अगर नहीं करता है, मैं उनको सुख दे रहा हूं लेकिन वो थैंक यू भी नहीं बोल रहा है, आभार भी व्यक्त नहीं करता है, तो वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म, वो जाने। लेकिन मेरा धर्म कर्म क्या है? सबको सुख देने का धर्म कर्म है। तो मुझे इस जीवन में सबको अच्छा ही देना है। एक सामान्य मिसाल में सुनाऊंगी कि शादी होती है कोई के घर में तो हम प्रेजेंट लेके जाते हैं ना, चीज वस्तुएं लेके जाते हैं, और वो नोट करते क्या दिया आपने। और फिर जब हमारे परिवार में शादी होती है तो हमने जो दिया उतना ही वापस लौटाएंगे। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो देंगे वो पाएंगे। तो हम सदा देते जावे देते जावे। अगर कोई को हमारी कदर नहीं है लेकिन भगवान मुझे देख रहा है, समय पर हमें कोई मदद नहीं करता है तो दुखी मत होना। समय पर हमें कौन मदद करेगा? मेरा भगवान मुझे मदद करेगा, भगवान मेरा साथी है, मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, भगवान मुझे देख रहा है। और यह हुई अष्ट शक्तियों की बात। देवी देवताओं में ये शक्तियां होती है और देवताओं में गुण भी होता है। कहते हैं ना, गुण बिगर देवता सोपता है, सोपता है नहीं सोपता। एक बार क्या हुआ कि हमने हमारे सेवा केंद्र में जाहिर में झांकी सजाई थी, प्लॉट तैयार किया था, सारे शहर में घुमाया, हमने लक्ष्मी नारायण को बनाया, राधे कृष्ण को बनाया और उसको नाश्ता पानी भी पहले से करा दिया और सूचना भी दी हिलना नहीं, ऐसी पोज में रहना। तो जैसे ही वो झांकी निकली और जाहिर चौक में तो लोग बहुत ही इकट्ठे हो गए, दर्शन करने लगे, पैसा फेंकने लगे, तो जो देवी देवता बन के बैठे हैं ना उसका पोज बदल गया, हंसने लगे, थोड़ा इधर उधर सबको देखने लगे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। हमने समझाया था कि अपने देवता पोज में रहना। और कोई ने फल उसको दिया, रास्ते में जूस दिया तो पी रहे थे। तो जब झांकी वापिस आई ना सेंटर पर, तो कई लोग साथ में थे, तो उन्होंने मुझे बोला, बहन जी देवी देवता तो बहुत सुंदर बनाए थे लेकिन गुण नहीं था। तो गुण बिगर देवता शोभता है, गुण बिगर देवता नहीं माना जाता। तो गुण भी हमारे अंदर आते हैं, शांति, धीरज, प्रेम, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुखता, ये सारे देवताओं के गुण हैं। जब मनुष्य मरता है तो क्या बोलते हैं, कहाँ गया? स्वर्ग में गया। अच्छा, स्वर्ग में गया तो उनका यहाँ जीवन चरित्र देखो तो कैसा था बताओ, और यहाँ से वो गया स्वर्ग में तो यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? नरक था। नरक को छोड़ के स्वर्ग में गया और उसके अंदर तो क्रोध था, लोभ था, मोह था, तो क्या वो स्वर्ग में गया होगा? विकृति थी, पाप कर्म करता था, दया नहीं रखता था, तो क्या वो स्वर्ग में गया? नहीं जाएगा स्वर्ग में। राजयोग मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करने से, गुणों को धारण करने से, शक्तियों को धारण करने से हम देवता बन सकते हैं। विश्वास है इस बात पर कि हम मानव भी देवता बन सकते हैं? बन सकते हैं, जरा हाथ ऊंचा करो, बन सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी बताती हूँ लास्ट में, कि शास्त्रों में भी आता है कि एक बार स्वर्ग में देवताओं की मीटिंग हुई और देवताएं आपस में सोचने लगे, इंद्र भी था मैन राजा, तो इंद्र स्वर्ग में साथ में अन्य देवी देवताएं, सभा भरी है देवताओं की, और देवताएं आपस में चर्चा कर रहे थे कि मानव में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, चाहे तो हमारा इंद्रासन छीन सकता है। देवता ने बोला, हमारे पद छीन सकता है इंसान, मानव में बहुत ताकत है, जो चाहे सो कर सकता है, है ताकत। तो एक देवता बोला, चलो मानव की शक्ति अंदर भरी पड़ी है ना, उसको हम इकट्ठे कर लेते हैं, ले लेते, छीन लेते हैं उनकी आत्मा की शक्ति, छीन लेते हैं। देवताओं में तक ताकत होती है, छीन लेते हैं, ऐसे हाथ करते छीन लेते हैं। तो बुद्धि को भ्रष्ट बना देते हैं। तो दूसरा देवता बोला कि शक्ति को छीन करके हम कहां रखेंगे, कहां छुपाएंगे? तो एक देवता बोला, समुद्र में छुपा लेंगे। दूसरा देवता बोला आसमान में छुपा देंगे, तीसरा देवता बोला धरती के पेटाड़ में छुपा देंगे। तो एक देवता बोला कि नहीं नहीं, इंसान वहां भी पहुंच जाएगा। आज पहुंच गया ना, आसमान में पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया, वहां प्लॉट लेने के सोचते हैं, खोजते रहते हैं दुनिया, यहां दुनिया है या नहीं। समुद्र के अंदर भी गया, हम बॉम्बे गए थे 6 मास पहले, तो वहां पर इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बाजू में समुद्र है, और वहां हमको वहां की बहनें घुमाने ले गई, चलो आप यहाँ आए हो प्रोग्राम के लिए, हम आपको घुमाने ले जाते हैं। तो नाव में बिठाया, नाव जा रही थी समुद्र के अंदर, तो जाते जाते रास्ते में बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे, तो मैंने नाविक को पूछा कि ये पाइप क्यों समुद्र के अंदर लगे हुए, बड़े बड़े पाइप क्या खींच रहे हैं। तो कहते हैं वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर, यहाँ के समुद्र के अंदर से पेट्रोल निकाला है, अंदर गए और अंदर से पेट्रोल निकाला, और यह पेट्रोल मशीनों के द्वारा खींच रहे हैं और रिफाइनरी में जा रहे हैं और रिफाइन करके पेट्रोल पंप में जा रहा है। मैंने कहा वाह, तो मनुष्य धरती के अंदर भी चला गया, धरती के पेटाड़ में भी चला गया, समुद्र में भी चला गया। तो देवताओं को लगा था कि वहां इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगर इंसान अपनी अंतर प्रज्ञा चक्षु को अगर जगाए और अपने अंदर जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, प्रभु चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, गुणवान बनेंगे, शक्तियों को धारण कर लेंगे, तो इंसान प्रभु को भी पा सकता है, तपस्या के बल से भगवान तक भी पहुंच सकता है इंसान, और मानव से देवता भी बन सकता है इंसान। इसलिए देवताएं भी हमारे से डरते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, कोई अंदर में नहीं जाता है, बाह्य जगत में, चीज वस्तुओं में, वस्तु वैभव में फंसा रहता है, सबकी बुद्धि उसी में ही फंसी रहती है। लेकिन यहां भगवान ने सिखाया है, बच्चे तुम नर से नारायण बन सकते हो, तुम्हारे में शक्ति है और मैं तुम्हें साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम रोज मेडिटेशन करेंगे, इनर पावर बढ़ेगी, तुम गुणवान बन जाएंगे, तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे और तुम्हारी विकृतियां जो भी है अंदर की नष्ट हो जाएंगी, तुम शुद्ध पवित्र देवात्मा बन जाएंगे। बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? बनना है हमें, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? देवता बनने के लिए बस मेडिटेशन पर अपने अंदर जाने की कोशिश करें, अंतर प्रज्ञा चक्षु को जागृत रखें, आत्मचिंतन करें, प्रभु चिंतन करें, ज्ञान का चिंतन करें। अच्छे विचारों से व्यक्ति अच्छा बन सकता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो हम बन सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का लक्ष्य है, बहुत सुंदर लक्ष्य दिया जाता है कि आप नारी से लक्ष्मी बन सकते हो, नर से नारायण बन सकते हो और स्वर्ग के देवता भी बन सकते हो और भगवान तक भी पहुंच सकते हो। दुनिया में कई ऐसे भगत हुए हैं जिन्हों को भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान तक पहुंचे हैं। नरसिंह मेहता हमारे जूनागढ़ का है, गरीब था, साधारण था, लेकिन भगवान की याद में लवलीन था, भजन गाता था और गरीब परिवार था, लेकिन उनका काम किसने किया? भगवान ने किया। उनके बेटे की शादी, बेटी की शादी भी भगवान ने की, बेटी का दहेज भी भगवान ने पूरा दिया। मीरा भी सच्ची भक्ति करती थी, सच्ची तपस्विनी थी, और मीरा इतनी भगवान के प्यार में पागल थी, उनको बार बार श्री कृष्ण दिखता था। तो हमारे अंदर भी वो ताकत है, ईश्वर का दर्शन जीते जी हम कर सकते हैं। और भगवान को पा सकते हैं और हम अपनी आत्मा की गति श्रेष्ठ गति कर सकते हैं, शत गति भी हम कर सकते हैं। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो आज का ये चार सेशन पूरा हुआ, चौथा कि मेडिटेशन से असंभव को संभव करने की शक्ति आ जाती है। इंसान में ताकत है, इंसान गुणवान बन सकता है, देवता बन सकता है। अभी और भी सेशन बाकी है आपका, तो आप जहां से आए हो वहां ब्रह्मा कुमारी संस्था है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था के थ्रू आए हो ना, तो वहां जाकर के और 3 सेशन करना, 7 दिन की शिविर होती है। तो आप बहन जी को बोलना हमें और 3 सेशन कराओ, तो आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। अच्छा, अभी हम मेडिटेशन करेंगे, सभी सीधा होके बैठेंगे, एकाग्रता से एक में एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। लाल लाइट करेंगे, बाह्य जगत के विचारों को अंदर में समेट ले। शांत हो जाए, एकदम शांत अपने आप को कर दे। अपने आप को देखे, मैं कौन हूं? मैं भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, इस शरीर के हर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करने वाली मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस शरीर का नाश हो जाता है, मेरी आत्मा का नाश नहीं होता। मैं आत्मा सदा अमर हूं, मैं अमर आत्मा। परम धाम की निवासी हूं। इस सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा देह धारण कर पार्ट प्ले कर रही हूं। मेरा आत्मा का असली घर परम धाम शांति धाम है। मैं अपने मन बुद्धि से शांति धाम में जा रही हूं। इन पांच तत्वों की दुनिया से पार सूर्य चांद सितारों से पार नील गगन से पार प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व है, जहां चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप इस लाल सुनहरी प्रकाश में इस परम धाम में रहने वाली महसूस कीजिए। देखे लाल सुनहरी प्रकाश को, अपनी आत्मा को देखिए। मैं आत्मा एक लाइट रूप में हूं, एक प्रकाश के पुंज में हूं। मैं आत्मा एक शक्ति हूं। परम धाम की रहने वाली हूं। इस परम धाम में सबसे ऊपर मेरी आत्मा के पिता परमात्मा, वो एक परम ज्योति है, सदा शिव है, उसको मैं देख रही हूं। देखिए उस परम ज्योति को, देखिए वो पिता सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा उनकी संतान शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्मा शिव पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान, एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। महसूस कीजिए मेरा पिता पवित्रता का सागर है। परमात्मा शिव दिव्य ज्योति स्वरूप स्वयं सुख का सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं शिव के सानिध्य में हूं, परमात्मा शिव मुझे देख रहा है। मैं आत्मा शिव स्वरूप को देख रही हूं। वो सर्वशक्तिवान की शक्ति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। मेरी आत्मा के ऊपर भी पड़ रही है, मेरी आत्मा की इनर पावर बढ़ रही है। मेरे जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं, मेरी आत्मा की विकृति नष्ट हो रही है। मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूं। परमात्मा शिव से शक्ति लेकर परमात्मा शिव को देखते देखते फिर से मैं इस सृष्टि रंगमंच पर निमित मात्र पार्ट प्ले करने इस साकारी दुनिया में इस साकार शरीर में आ रही हूं। मैं सदा परमात्मा शिव को याद करके इस जीवन में इनर पावर को बढ़ाऊंगी, शक्तिशाली बनूंगी, श्रेष्ठ गुणों को धारण करके मैं मनुष्य से देवी और देवता जरूर बनूंगी। मैं अपने मन वचन कर्म को सदा श्रेष्ठ रखूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।